ओम शांति। स्नेह का सागर शिव बाबा, इस समय जो कि संसार में जो सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह, अकाल पड़ चुका है, तो बाबा ऐसे समय में हम सबको सच्चे स्नेह का, निस्वार्थ स्नेह का अनुभव कराते हैं। सच्चा स्नेह क्या होता है, निस्वार्थ स्नेह क्या होता है, कई बार बाबा ने साकार मूल्य में कहा, निष्काम सेवादारी एक बाप ही है, निस्वार्थ सेवादारी एक बाप ही है। हम भले ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भविष्य को लेकर भी कोई ना कोई स्वार्थ हम सब आत्माओं को छिपा रहता है कुछ ना कुछ, चाहे वो सुख पाने की लालसा है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने की इच्छा है। लेकिन केवल एक जो निस्वार्थ सेवादारी, निस्वार्थ स्नेही है, स्नेह का सागर, वो एक बाप ही है। तो ये जो मुरली है 1986 की 4 मार्च सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन है स्नेह। तो बाबा ने स्नेह कैसे व्यक्त किया इसमें, और स्नेह से क्या क्या फायदे हैं, स्नेह जो हमारे ब्राह्मण जीवन का विशेष फाउंडेशन है, अगर वो फाउंडेशन पक्का नहीं है तो जीवन कैसे लड़खड़ाता रहता है, और स्नेह का फाउंडेशन पक्का है तो उसका जीवन में क्या क्या अनुभव होता है, कैसे उसकी सफलता मिलती है, कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो सारा इस मुरली के बारे में बताया। विशेष रूप से बाबा विदेशियों से मिल रहे हैं इस मुरली में, अधिकतर विदेशी सामने बैठे हैं, अमेरिका अफ्रीका वाले, इससे पिछले मुरली में ऑस्ट्रेलिया वाले थे और उससे पहले यूके वाले। तो बाबा ने हर एक की विशेषता बताई थी। इस मुरली में बाबा कहते हैं अमेरिका अर्थात आ मेरे, और ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा करने वाले, जो कोई अन्य ना कर सके, अन्य अनन्य हो, और यूके अर्थात ओके रहने वाले, सदा ओके, और कर्नाटक अर्थात कोई नाटक करने वाले नहीं, विशेष नाटक करने वाले, महाराष्ट्र अर्थात महान राष्ट्र। तो ऐसे बाबा चाहे कोई कंट्री है या कोई आत्माएं सामने बैठी हैं, हर की विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं। इसलिए बड़े लंबे समय से लहर चल रही है, तो बाबा किसी की कमजोरियों को नहीं देखते हैं, विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं। तो हमारे भी वही संस्कार होने चाहिए। तो विशेष स्नेह के ऊपर ही सारी मुरली है, और बीच में कैसे सेवाओं में वृद्धि होती है, अगर किसी को ज्ञान सुनाना तो उसमें हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, और माताओं के लिए कुछ बाबा ने बोला है, पार्टियों के साथ कुछ शेयर किया है। तो देखेंगे हम इस मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है, और हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो बाबा ने सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह के बारे में बताया, क्योंकि सारे कल्प का आधार इस स्नेह की श्रेष्ठता है। जैसे स्कूल में कोई स्टूडेंट होता है तो उसकी जो सारा जीवन उस किस पर निर्धारित है, उसकी पढ़ाई पर निर्धारित है। इसलिए कहा था विद्यार्थी काल जो वो स्वर्णिम काल है, जो विद्यार्थी जीवन में सीख लिया वो भविष्य उसका उसी तरह निर्धारित होगा। जिसने दिन रात पढ़ाई करके मेहनत की है, अच्छी पोस्ट पोजीशन पर पहुंचा है, आईएएस बन गया है, तो उसका आधार क्या था, पढ़ाई। तो उसका फाउंडेशन वो विद्यार्थी जीवन है, दिन रात मेहनत करके, दिन दुगनी रात चौगुनी पसीना भी बहा के कर देता है, और वो अच्छी पोस्ट पोजीशन पहुंचता है, और उसका परिणाम जीवन भर सुखी रहता है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प की जो श्रेष्ठ प्रारब्ध है उसका आधार अभी की श्रेष्ठता है। अभी संगमयुग की श्रेष्ठता ही सारे कल्प की कल्प का आधार है वो। तो बाबा सर्वश्रेष्ठ रचना, जो नई रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना उसको देख रहे हैं, और वो रचना कैसी है, अति प्रिय है। और अति प्रिय क्यों है? क्योंकि पवित्र है। बाबा कितने पवित्र है इसलिए वो अति प्रिय है। तो इसमें सबसे पहले तो एक स्नेह के साथ हमारा फाउंडेशन प्योरिटी का भी हो गया, साथ में स्नेह का सागर है, इसलिए बाबा के हमने हर वाक्य को जीवन में आत्मसात करने के लिए सहज रूप से स्वीकार कर लिया। नहीं तो संसार में प्योरिटी को अपनाने के लिए कितना मुश्किल समझते हैं लोग, प्योरिटी का नाम ही नहीं लेते हम। वो तो उनके लिए तो बहुत बड़ा जैसे पहाड़ है उनके आगे, असंभव है। लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों के लिए संभव बना दी, क्योंकि हमको बहुत प्यार किया पहले बाबा ने, है ना। मुरली बाबा पहले क्या करते हैं, पहले हमको खूब प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, फिर हमें हम कमी कमजोरियां बताते हैं हमारी, फिर धीरे धीरे हमारे में शक्ति बढ़ते हैं, ताकत बढ़ते हैं, और उस बात को हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा कहते तुम पवित्र आत्माएं हो इसलिए अति प्रिय हो। और इसका गायन फिर क्या बताया, एक तो बाप के अभी प्रिय हो, अति प्रिय हो, और भविष्य में देव आत्माओं के भी सर्व के प्रिय होंगे, सर्व देवात्माओं के प्रिय होंगे, और द्वापर में पूज्य होंगे, भक्तों के प्रिय हो जाएंगे। और स्वर्ण स्वर्ग के लिए फिर बाबा ने याद किया, स्वर्ग में फिर तुम क्या होंगे, सर्वश्रेष्ठ दैवी प्रिय आत्मा बन जाएंगे। और अभी हाँ, और अभी संगम पर बाप के प्रिय होने के कारण ब्राह्मण सो फरिश्ता, और वहां स्वर्ग में राज्य अधिकारी हो जाएंगे। और द्वापर में फिर द्वापर कलयुग में बाबा ने कहा कि तुम्हारी पूजा कितनी विधि पूर्वक होती है, पूजा अर्चना गायन होती है, आह्वान करते हैं बड़े प्यार से, और वो जड़ है, पता भी है ये जड़ है, लेकिन फिर भी उन जड़ में भी कितना निश्चय उनको। और आज हम देख रहे हैं संसार में मंदिर निर्माण का, तो क्या है वो भक्तों के अंदर कितनी एकदम तड़फ है। भले संसार में वो हलचल की परिस्थितियां हैं, लेकिन भक्तों के अंदर कितना वो देवताओं के प्रति प्यार है, इष्ट देव के प्रति प्यार है, तो कितना जोर शोर से वो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं जी। त्रेता, हाँ त्रेता वंशी हैं वो, फिर भी उनके प्रति भी उनकी कितनी मान्यता है, कितना ऊंचा दृष्टिकोण है। तो बाबा के तो सब जड़ होते हुए भी इतना ऊंचा है, लेकिन हम सभी चैतन्य हैं, तो वो अनुभूति हमको अभी करानी है। और फिर बाबा ने कहा विदेशी क्या समझते हैं, आपकी यादगार भारत में है। तो बाबा ने कहा प्रभु प्रिय आत्माएं हैं, इसलिए उन तीनों से भी प्रिय अभी हो, संगम पर बाप के प्रिय हो, और ये आधार है सारे कल्प का आधार, बाबा ने कहा। और विदेशियों के लिए बाबा ने कहा कि आप समझते हो अपने को, हमारी भी भारत में पूजा होती है। बाबा ने कहा ज्यादा मंदिर तो भारत में ही बने हैं, तुम्हारी यादगार है क्यों, बाप भारत में आते हैं, बाप भारत में आते हैं, तुम्हारी भी यादगार इधर है, क्योंकि तुम्हारे में संस्कार हैं। कौन से? सेवा के संस्कार हैं। भले बिखर गए विदेशों में, चाहे अमेरिका में चले गए, अफ्रीका में चले गए, लेकिन सेवा के संस्कार हैं, स्नेह के संस्कार हैं, इसलिए तुम बच्चे भी यादगार तुम्हारी भारत में ही है। क्योंकि सेवा के संस्कार पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ज्यादा वो संस्कार कहाँ हैं, भारत भूमि में है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, मदर इंडिया भी कहा जाता है, और अतिथि देवो भव कहा जाता है। अनेक प्रकार के अलंकारों से भारत को सजाया गया है इतिहास में, है जी, दानी भूमि है ये, भारत माता कहा जाता है। तो भारत के प्रति हर एक का, जगत गुरु भी कहा जाता है, तो हर एक का बहुत ऊंचा दृष्टिकोण है। इसलिए बाबा विदेशियों को भी स्मृति दिलाते हैं कि तुम भी भारतवासी हो, तुम्हारे भी यहाँ यादगार हो रही, यादगार के रूप में अनेक मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे स्नेह के संस्कार है। बाबा ने कहा जब तक रूहानी स्नेह नहीं है तब तक कोई ज्ञान सुनेगा नहीं है। अगर हम सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं तो सबसे पहला फाउंडेशन क्या रहा, स्नेह। अगर प्रदर्शनी में किसी ने ज्ञान भी सुना, लेकिन जो सुनाने वाला है उसके अंदर भी तो कितना स्नेह था, वो सबने देखा उसके हाव भाव को, उसके समझाने के तरीके को, वहां के वाइब्रेशन, माहौल, वातावरण कैसा है, सबके चेहरों को देखा, तो बाबा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सब आत्माओं में कैसे स्नेह उड़ेलता है और वो प्रत्यक्ष रूप से कैसे चेहरे और चलन से दिखाई देता है और उसका प्रभाव आने वाली आत्माओं के ऊपर पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा जब तक स्नेह नहीं है रूहानी स्नेह तब तक ज्ञान नहीं सुनेगा कोई भी। तो ये बात थी। फिर बाबा ने कहा विदेशियों का भी फाउंडेशन क्या रहा? स्नेह। और ये स्नेह है सेवा में सफलता का रूप है। ये अगर सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो रूहानी स्नेह है, इसलिए विदेशी स्नेह के प्रति आकर्षित होते हैं। और कौन से स्नेह मिले उनको? चार प्रकार का स्नेह बाबा यहां ने जिक्र किया, बाप से स्नेह, परिवार से स्नेह और दिल से स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। संसार में अगर देखा जाए जो बताया कि पहले स्वार्थी स्वार्थ छिपा होता है, अगर लौकिक बाप को देखा जाए तो लौकिक बाप में भी क्या होता है, बच्चों के प्रति स्नेह तो होता है लेकिन स्वार्थ बहुत बड़ा छिपा होता है। भले उसका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करके पढ़ाई लिखाई करके बड़ा करते हैं, फिर अपेक्षाएं जन्म लेती जाती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाओं की उत्पत्ति होती है फ्यूचर के, उनके माँ बाप अपने फ्यूचर के प्रति सोचते हैं कि हम बड़ा होगा तो बड़े पोस्ट पोजिशन पर पहुंचेगा, हमारा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, एकमात्र सहारा होगा ये। तो कितना बड़ा स्वार्थ छिपा होता है, घूमते रहेंगे। तो यहां बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है, यहां बाबा का स्नेह कैसा है? एकदम निश्चल स्नेह है। और परिवार का स्नेह कैसा होता है संसार में? चाहे बहन है, भाई है, काका मामा चाचा, सबका कुछ ना कुछ छिपा होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं। आज बहन भी अगर भाई को राखी बांधती है तो भी क्या होता है, लेकिन यहां खर्चे चाहिए। और यहां बाबा ने कई बार मुरली में जिक्र किया है कि तुम बच्चे राखी बांधने जाते हो, कोई सोचते हैं कि कुछ इनको चाहिए होगा, लेकिन बाबा कहते हैं पहले उनको तो हमको कुछ चाहिए नहीं, 5 फोटे सिक्के चाहिए। तो यहां कोई इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है, उस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि हमको सामने वाले से कुछ ऐसी प्राप्ति हो, क्योंकि हम आत्माएं तो हैं अनेक खजानों से संपन्न है, जो कल ही बाबा ने स्लोगन में बताया था, क्या चीज? सर्व प्राप्तियों से जो संपन्न आत्मा है वो संतुष्ट है, उनकी निशानी संतुष्टता, इसलिए संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। तो बाबा ने हम सबको सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना दिया है, लेकिन वो प्राप्तियां हमारे स्मृति में कहां तक रहती है इसके ऊपर निर्धारित करता है। तो जितना प्राप्तियां हमारे मन में रहती हैं उतना हम दूसरों को भी निश्चल रूप से निस्वार्थ रूप से स्नेह का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि हम भरपूर हैं इसलिए कोई अपेक्षा नहीं होगी। तो परिवार का स्नेह और दिल से स्नेह है, यहां दिल से। संसार में तो दिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अर्थात अनेक प्रकार के संबंधों में जुटी हुई हैं तारे, कोई कहां जुटा हुआ कोई कहां दिल लगा हुआ है। और निस्वार्थ स्नेह है ये, यहां बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, अगर और कहीं दिल लगे तो फरिश्ता बन नहीं सकता है। तो निस्वार्थ स्नेह अर्थात हम आत्माओं में भी भले स्वार्थ है लेकिन हम आत्माओं में है कि जितना हमने पाया हमारे से अधिक दूसरे पाए, क्योंकि हमें बाबा ने जो अनुभव कराया कि सभी हम एक ही परिवार के हैं, असली परिवार के हैं। इसलिए बाबा निस्वार्थ स्नेह, बाप का स्नेह, दिल का स्नेह, ये विदेशी सारा अनुभव करते हैं, इसलिए बाप का बन गए। तो उस और इस स्नेह का स्वरूप उस सेवा में सफलता का आधार बन जाता है। बाबा ने कहा जब तक स्नेह नहीं है तब तक क्या नहीं होगा? एक तो प्रज्ञान नहीं सुनेंगे, दूसरा प्रभावित नहीं होंगे, और वो आगे आएगा। कलराठी जमीन तो अभी हुई नहीं, अभी तो चल रही है ठीक ठाक, वो द्वापर कलयुग में होगी कलराठी जाकर। तो बाबा ने कहा अगर स्नेह है तो ज्ञान स्पष्ट रूप से सुनेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अगर स्नेह नहीं है तो उनकी वृत्ति में क्या क्यों ऐसे कैसे वृत्ति में क्वेश्चन उठेंगे। हाँ, अगर स्नेह है, अगर क्वेश्चन भी उठते हैं तो समझने के उद्देश्य से उठेंगे कि इस बात को हम कैसे समझें। तो स्नेह का कितना महत्व है, और जो स्नेही होंगे तो स्नेही का बोल हर कैसे लगेगा, हर बोल स्नेह से प्यार से भरा हुआ लगेगा। और स्नेह है जिससे हमारा स्नेह है तो हर बोल उसका उमंग सा वाला लगेगा, उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें अगर डांटेगा भी तो भी प्यार अनुभव होगा, वो कल्याणकारी भावना से, शुभ भावना शुभ कामना से। और इस स्नेह में सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है, और इस स्नेह में कोई हलचल नहीं है, इस स्नेह में कोई मुश्किल नहीं है, ये सहज है। लेकिन मुश्किल तो है, कंडीशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन बाबा धरनी ऐसे तैयार कर देता कि मुश्किल लगता नहीं है फिर वो, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बताया ना, 7 दिन के कोर्स में तो हमको बहुत प्राथमिक उपचार की बातें बताई जाती हैं, लेकिन जो हाई लेवल की बातें धारणाएं होती हैं वो धीरे धीरे बाद में होता है। लेकिन उन बातों को स्वीकार करने के लिए बाबा हमारे बुद्धि रूपी धरनी को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि जब भी ज्ञान का बीज उसमें डाला जाता है तो वो सहज रूप से फलीभूत हो जाता है। तो हाँ, वो भी आएगा। तो इसने कितने सारे फायदे हैं, हलचल समाप्त हो जाएगी, जो भी बोल बोलेगा वो सब उसमें प्यार भरा होगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा, ज्ञान सहज रूप से स्पष्ट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगी, उमंग सा में चलता रहेगा वो। और उसका बताया कि जो बड़ी दिल वाले हैं, क्योंकि बाप बड़ी दिल वाला है, तो बड़ी दिल वाले उनको हर बात छोटी लगेगी, लेकिन जो छोटी दिल वाले हैं उनको हर छोटी बात भी बड़ी लगेगी। तो सुनने के कितने फायदे हैं, ये सहज रूप से सुनेंगे वो। तो हमको देखना है, हमारा अब प्रश्न ये है कि हमारा स्नेह कैसे बढ़े, क्योंकि बाबा के प्रति स्नेह बढ़ना बढ़ाना उसको थोड़ा टेढ़ी खीर है ये। तो कैसे बढ़ेगा स्नेह, देह को बोलना, इसी में बाबा ने एक बीच में लाइन कही है, श्रीमत की बात की है। तो पहले तो हमको श्रीमत के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाबा ने कहा वो श्रीमत क्या लगेगी, उसको श्रीमत भी सहज रूप से स्वीकार करेंगे, उसको श्रीमत भारी नहीं लगेगी, श्रीमत पर चलना मुश्किल नहीं लगेगा। तो हमको देखना है श्रीमत कौन कौन सी मिली है। और स्नेह इसलिए बढ़ेगा अगर हम अपने पुराने जीवन को देखें, उसका विश्लेषण करें कि पुराने जीवन में हमें जो स्नेह मिला उससे क्या क्या हुआ। अगर हम कंट्रास्ट करें तो स्वतः वो वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, और बाबा से हमको क्या क्या प्राप्ति हुई, क्या क्या मिला, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, ब्राह्मण जीवन के आदिकाल से अब तक जो भी हमारे जीवन में अमूल चूल इतने परिवर्तन हुए हैं, उसका आधार क्या है, भगवान का स्नेह है। तो हमें स्वयं के जीवन में देखना है कि सचमुच स्नेह ने कहां कहां काम किया है, जो धारणाएं बड़ी मुश्किल लगती थी, जो संसार में अभी भी क्या है, जब भी हमें जितनी बार स्नान करने जाते हैं तो दुनिया में तो एक दिन स्नान करने में कई बार कईयों को मुश्किल लगता है, हम आत्मे जितनी भी बार बाहर जाएंगे तो हर बार स्नान करेंगे। हमको पता है जब ज्ञान में आते हैं तो सर्दियों के दिनों में हम खुले में स्नान कर लेते, जितनी मर्जी भयंकर सर्दी हो और ठंडे पानी से वो भी, तो क्या था, स्नेह था ना, पानी की बाल्टियां दूर से ला के भी, अगर दूसरा कोई वहां बाथरूम में बिजी है तो बाहर से पानी की बाल्टी भर के खुले आकाश के नीचे नहा के छत पर निकल जाते थे पहले सेंटर में। तो क्या है, स्नेह की शक्ति है वो, भगवान के स्नेह ने खींचा है। तो सूक्ष्म रूप से बाबा हमारे में वो ताकत भरता है, तभी तो इस रास्ते पर चलने के लिए सक्षम होते हैं। तो भगवान का स्नेह कितना ऊंचा है, उसमें कितनी शक्ति है, ताकत है, बल है, नहीं तो इस मार्ग पर चलना कोई सहज काम थोड़ा नहीं है। चलते चलते क्यों खिसक जाते हैं वो, क्योंकि भगवान से मिले हुए स्नेह को हम भूल जाते हैं, संसार के स्नेह का पलड़ा भारी रहता है और इस अलौकिक संसार के स्नेह को हम भूल जाते हैं, इसलिए धीरे 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 कदम हमारे पीछे हट जाते हैं। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिनको हमने पार करने के लिए असंभव समझा होगा, लेकिन वो भी संभव हो गया, कहां से हुआ वो, तो स्नेह के कारण। बाबा ने कोई स्नेह के ऐसे बीज बो दिए कि वो फलीभूत हो गए फटाफट, थोड़ा सा भी अटेंशन देने से, थोड़ी सी भी स्वयं के हमने चेकिंग की, जांच की, निरीक्षण किया, तो हम स्वतः उस परिस्थिति से पार हो गए। या किसी के जीवन को देख के अगर स्वयं के जीवन में कम स्नेह का अनुभव हुआ है तो सामने वाले के जीवन में भी परमात्म स्नेह का प्रत्यक्ष रूप देखा होगा तो भी हमारे जीवन का परिवर्तन हो गया। तो सूक्ष्म रूप से बाबा का स्नेह कैसे हमारे पर बरस रहा है, तो देखना है स्नेह का फाउंडेशन, ताकि उसमें बाबा ने बताया कि प्रवाह ने फिदा हो गया, आगे क्षमा पर फिदा हो गए विदेशियों के प्रति का। फिर बाबा ने अमेरिका को फिर याद किया, अमेरिका के बारे में बताया कि ब्रिक्स में आदिकाल से ही अमेरिका को कहां रखा है, ऊपर रखा है टॉप पॉइंट पर। दो विशेषताएं बताई अमेरिका की, कौन सी है? हाँ, ऊपर बंदूक लेके बैठे हुए। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं वृक्ष के ऊपर दिखाए, कल आप वृक्ष के ऊपर देखेंगे तो वहां अमेरिका और रशिया, इसमें खाली अमेरिका की बाबा ने विशेषताएं बताई हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं? दो, एक तो बताया कि विनाश के लिए, विनाश की शक्ति है, जो भी एटॉमिक हथियार अस्त्र शस्त्र का निर्माण, आज भी संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल किसको माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है, तो उसका निर्माण करते हैं वो। तो एक तो ये विशेषता है बाबा ने कहा, और दूसरी विशेषता है कौन सी है? दूसरी विशेषता है यूएन का ऑफिस भी वहां, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का। जहां विनाश की बात होती है तो वहां ऑफिस यूएन का भी, अर्थात संसार में जो अनेक प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, या आपस में देशों की अनबन हो जाती है, नहीं बनती है, कोई समस्या नहीं, कुछ सुलझा पा रहा है, तो फिर उस मुद्दे को वहां यूएन में रखा जाता है और वहां से उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात आपस में मिलाने का प्रयास किया जाता है। तो जहां एक तरफ विनाश की विशेषता है, वहां दूसरी तरफ मिलाने की भी विशेषता है। लेकिन बाबा ने कहा वो मिला नहीं पाते हैं, प्रयास तो करते हैं लेकिन मिला नहीं पाते हैं। विनाश का भी काम करते हैं, शांति की स्थापना में काम कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ रूप से नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का वास्तविक कर्तव्य है अनेक धर्मों को आपस में मिलाना, वो तुम बच्चे ही कर सकते हो, वो नहीं कर सकते क्योंकि यथार्थ नहीं है वो। तो वास्तविक कर्तव्य हम आत्माओं का है। जैसे बाबा ने कहा, जैसे वो साइंस के हिसाब से आगे हैं, तुम बच्चे साइलेंस के आगे हो। जब ये दोनों बातें प्रत्यक्ष रूप से होगी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, साइंस की बात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन जब साइलेंस की बात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी तुम बच्चों के द्वारा, तो दोनों की प्रत्यक्षता के हिसाब से बाप की प्रत्यक्षता होगी, दोनों झंडे लहराएंगे, दोनों झंडे, साइंस का झंडा भी और साइलेंस का भी झंडा, दोनों झंडे लहराना चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे जैसे कोई भी आईपी विदेश में जाता है तो क्या करते हैं, उसका एक तो आप भक्त करते हैं लेकिन उसके देश का झंडा भी वहां लगाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी झंडा लगना चाहिए, कौन सा? साइलेंस का झंडा व्हाइट हाउस में। वो तो बाबा ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, लाल किले के बारे में कहा है, व्हाइट हाउस के बारे में भी कहा है, कलकत्ता के विक्टोरिया ग्राउंड जब तुम्हारा हो जाएगा तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, जब पूरा आबू तुम बच्चों का हो जाएगा तब प्रत्यक्षता होगी, हर एक दिल में आएगा मेरा बाबा आ गया हुआ है। तो अनेक प्रकार के ऐसे बाबा ने भविष्यवाणियां की हैं। तो दो प्रकार के झंडे हमेशा लहराते रहने चाहिए। तो ये अमेरिका में, फिर बाबा ने अमेरिका वालों को कहा कि अमेरिका अर्थात आ मेरे आ मेरे अर्थात मेरे बाबा। तो ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं आ मेरे, और बच्चे भी कहते हैं आ मेरे बाबा। तो विशेषता है उनकी ये। हाँ, वो आगे आएगा, पीस सभी बाद में आएगी, वो उससे पहले भी और कुछ बाकी है। तो ये था। फिर बाबा ने विदेशियों की और क्या विशेषता बताई कि सेवा में वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, है जी, हाँ, तीव्र गति से, फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत है, और जहां हिम्मत है बाप की मदद है। ना उम्मीद आत्माओं में भी उम्मीद जगाते हैं, अनेक आत्माओं के दिल में दीपक जग रहा है और बुद्धिमाला तैयार हो रही है, जो भी असंभव कार्य है वो संभव हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता है। तो तीव्र गति से सेवा बढ़ रही है, इसलिए बाप दादा देखकर हर्षित हैं, बाबा को भी खुशी है कि बच्चे हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी इस मार्ग पर हिम्मत कभी नहीं छोड़नी। यूथ का गाना है ना, हिम्मत के ऊपर, ये बहुत सारे गाने यूथ के हिम्मत के ऊपर में है जी, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। तो कितने वो जो गीत हैं, जब वो सुनते चलते चलते लगता था वो हम तो जैसे इस दुनिया में है ही नहीं है। तो ये गीत भी हमारे लिए जैसे कई बार ऑक्सीजन का काम करते हैं, इंटॉक्सिकेशन नशा चढ़ाते हैं, एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं, एकदम तुरंत तो ये गीत भी हमें हमेशा बीच बीच में सुनते रहना चाहिए, लेकिन उससे भी निराधार होना है। पुरुषार्थ के जो बताया था ना कल, प्राप्तियों से भी, प्राप्तियां, पुरुषार्थ, और क्या बताया था पांचवी, प्योरिटी लास्ट में था, पद और पुरुषार्थ, पुअर थिंकिंग, ये पांच बातें थी। तो इससे भी हमको निकलना है ना, हम प्राप्तियों की, वही जो हमको प्राप्तियां हो चुकी हैं उसी को पकड़े ना बैठ जाए कि हमारा यही इतना ही बहुत है, या पद तक, पद मिल गया बस यहां तक ही हमारी मंजिल है, वो भी नहीं पकड़ना है ना। पुअर थिंकिंग होनी चाहिए ना, पुरुषार्थ किसी के आधार पर हमारा होना चाहिए, और प्योरिटी हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो ये बाबा ने कहा सेवा में वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये कलराठी जमीन हो गई है, अब इस कलराठी जमीन में फल तैयार करने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता, दृढ़ता और स्नेह का संगठन, अर्थात कोमल मन, माना आत्माओं के मन को कोमल बनाने के लिए स्नेह का पानी देना है। बाबा ने कहा जहां जिन सेवा केंद्रों पर स्नेह का पानी मिलता है आत्मा को, वो फलीभूत होती है सेवा। अधिकतर सेवा केंद्रों पर देखा गया है जहां जहां स्नेह उमड़ता रहता है तो वहां सेवाओं की भी धूम मची रहती है, और ऐसी नहीं, क्वालिटी वाली सेवाएं होती हैं। और वो आत्माएं जो बहुत अपने को कमजोर समझती थी, आज वो शक्तिशाली बनकर अनेक प्रकार की सेवाएं कर रही हैं। सेवाओं की वहां बाढ़ आ जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है, और निस्वार्थ रूप से सेवाएं होती है। तो स्नेह एक ऐसी चीज है कि अनेक प्रकार के फल तैयार कर देती है। फिर बाबा ने यहां फल की बात कही है स्वर्ग के बारे में, फिर वहां जैसे संसार का एग्जाम्पल दिया, जैसे रेत में हरियाली में, रेत में भी क्या कर पैदा, हरियाली पैदा कर देते हैं, अनेक प्रकार के फल उगाते हैं, है ना। जैसे यहां भी राजस्थान में अधिकतर बहुत सारे किसान जो हैं बाहर विदेशों में जाते हैं, इसराइल वगैरह या दूसरी कंट्रियों में, किस लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए, बंजर भूमि में कैसे फल पैदा करें, उपजाऊपन। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि रेत में भी हरियाली कर सकते, रेत में भी फल पैदा कर देते हैं। जैसे बाबा ने कहा स्वर्ग में फल कैसे होते हैं, बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, टेस्टी होते हैं, लेकिन आजकल विदेश में कैसे फल हैं, बड़े हैं लेकिन स्वादिष्ट नहीं है। तो एक बार हमारे कोई भाई गए थे यहां विदेश में, तो जब वो वहां से वापस आए इधर, तो यहां ओम शांति उनमें सुनाया था कि वहां विदेश में तो देखने में अच्छा है लेकिन फल वहां के काम के नहीं है, बोला। और जिस देश में गए थे उस देश के जो भाई ना सामने बैठे हुए थे दो, तो बोला कोई काम के फल नहीं है उधर, तो उनको तो थोड़ा खराब लग रहा था। तो वो बोला इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इंडिया में फल भले छोटे लेकिन मीठे होते हैं, लेकिन आजकल विदेशों की हवा भी इंडियन फलों के ऊपर पड़ चुकी है, आज हाइब्रिड होता है। वो देखते हैं एक अमरूद आता है बड़ा सा, उसका स्वाद कैसा होता है, कोई कोई मीठा होता है, कोई बिल्कुल फीका होता है। हाँ जी, हाँ, बेर बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन को स्वाद दिन प्रतिदिन उनका भी बिगड़ता जा रहा है। तो कितना फर्क पड़ गया। तो बाबा ने स्वर्ग की तुलना की उसमें कि स्वर्ग में फल कैसे बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। तो ये बात ही, तो यहां स्नेह का पानी देना है ताकि सेवा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे। फिर बाबा ने कहा मल्टी मिलियन जो कि एक प्रोजेक्ट चलाया था मल्टी मिलियन मंथ्स का, पीस के लिए, शांति के लिए, शांति की शक्ति के लिए, हाँ, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। तो उसके बारे में बाबा ने जिक्र किया कि शांति सभी चाहते हैं, अगर किसी ने एक सेकंड भी शांति की अनुभूति कर ली तो उसको वो बार बार आकर्षित करता रहेगा, खींचता रहेगा। तो साइलेंस की अनुभूति करानी है, और वो अनुभूति हम तब करा सकेंगे जब हमारी आंतरिक साधना साइलेंस की चलती रहे, अंदर ही अंदर चलती रहे। और हम दो दिन पहले सुन रहे थे गोदावरी बहन का संदेश, मुंबई वाले सुना होगा आपने भी सबने, तो बाबा ने बहुत स्ट्रिकली दिया, 8-9 मिनट का संदेश है, बड़े जरूर सुनिए उसको, गुरुवार के दिन का, ये जो बीता हुआ गुरुवार है इसका। तो बाबा ने कहा, गोदावरी बहन जी कहते हैं कि जैसे मैं ऊपर गई तो मेरे पहुंचने से पहले बाबा वहां सामने दिखाई दे दिए प्रत्यक्ष, तो कहा कि बच्ची अभी ब्राह्मणों में धारणाएं बहुत हल्की होती जा रही हैं, बहुत लाइट हो गई हैं, समय के अनुसार धारणा जितनी मजबूत हो जानी चाहिए उसके बजाय और ही हल्की होती जा रही है। बाबा ने कहा अगर ऐसा ही रहा तो माया पागल कर देगी। और है जी हाँ, तो ये बाबा ने माना एक चेतावनी दी कहा, और कहा कि कम से कम एक दिन में 4 घंटे का योग होना चाहिए। और उनके शब्दों से लग रहा था कि बाबा ने एक चेतावनी दी है। बाबा ने कहा अचानक समय परिस्थितियां बदल जाएंगी और कुछ कर नहीं पाएंगे, और हम देख रहे हैं। तो बाबा की ये भी एक स्नेह का रूप है जो हमको बार बार कम से कम समय से पहले हमको थोड़ा चेता तो रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। तो हमको सारे दिन में देखना है कि हमारा योग कितना हो रहा है। तो हम समझते हैं बैठक वाला योग हमारा 4 घंटे हो जाना चाहिए, और आजकल वो योग तो लौकिक में भी संभव है समय अनुसार अगर देखा जाए तो, लॉकडाउन के कारण सवेरे शाम बैठो। अच्छा, अगर बैठ के हम घर में नहीं कर सकते तो जहां भी हमारा ऑफिस है, कहां कर्तव्य है, 5-5 मिनट भी हम जमा करते रहे। बाबा ने तो कहा 1-1 सेकंड भी जमा करो, कई मुरलियों में ऐसे दफा कहा हुआ है। हाँ, कई मुरली में ऐसा कि लास्ट समय में सबको एक जैसा समय मिलेगा। जैसे बाबा ने 14 साल की भट्टी अंत में आदि काल में थी, और लगता है वही अभी अंतिम काल में वही चलना। और अंतिम सेवा तो बाबा ने पहले कहा मनसा सेवा है, बाहर की सेवाएं सब ठप हो जाएंगी। अब जब तक ये इंटरनेट संचार माध्यम है, साधन है, तब तक ये सेवा है। अब जब ये भी नहीं होंगे तो कौन करा, किसको पूछेगा। हाँ, अगर कोई 6 महीने तक तपस्या का कर्मातीत बन सके। हाँ, तो माना कई मुरली में ऐसे भी कहा बाबा ने कि अभी जो का आपका वो तो चला रहे हैं खाना पूर्ति के लिए, माना मेंटेनेंस रख रहे हैं कि आगे पहुंचने के लिए, लेकिन आगे जो योग होगा जो अभी चल रहा है ये हमें बहुत परिपक्व बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, कुछ बड़े बड़े काम करने के लिए हमको तैयार करेगा। तो वास्तव में ये समय है, इसमें हमको देखना है, इशारा समझना है। तो बहुत स्ट्रिक्टली वो संदेश उनका सुना हमने, तो वो भी देखना है कि साइलेंस की शक्ति हमको दिन प्रतिदिन बढ़ानी, साइलेंस अर्थात योग का बल जमा करना है, ताकि आने वाले हमको कुछ बोलना नहीं पड़े। लास्ट में बाबा ने कहा चेहरा तुम्हारा दर्पण बन जाएगा, जो जिंदगी भर हमने किया है वो स्पष्ट रूप से हमारे मस्तक पर चमकेगा। मस्तक एक लाइब्रेरी की तरह काम करेगा, टीवी की तरह काम करेगा। तो वो समय अभी आ ही रहा है। तो ये थी साइलेंस की बात। फिर बाबा ने एक बात और स्नेह की और विशेषता बताई कि जब भी कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, डिस्टर्ब से बाहर आता है स्नेह के कारण आता है। अगर स्नेह नहीं है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्नेह, जहां जहां स्नेह का सूखा पड़ा हुआ है घरों में डिस्टर्बेंस है। आज जो धारणों की बात कही संदेश में, अगर धारणाएं ढीली हो रही है तो क्या है, परमात्म स्नेह की कमी है। पुरुषार्थ तो किया है लेकिन अभी घर से बाहर रहते थे तो लौकिक बिजनेस में बिजी रहते थे, लेकिन पता नहीं चलता था उनको टाइम का। अब जब घर में रहना पड़ रहा है तो सबके संस्कार निकल रहे हैं। 1-2 दिन तो आव वक्त ठीक होती है, लेकिन धीरे धीरे जब मेहमान ज्यादा दिन घर में रहना लग पड़े तो क्या उसकी निशानी है, घर से टकराव होता है, अर्थात फिर उसकी रोटी पर घी भी लगना कम हो जाता है। 2 बारी पूछते हैं उसकी निशानी है। अगर हम किसी के घर में मेहमान बनकर गए हैं, 2-4 दिन रोटी में घी लग रहा है, तब तक माना समझो वो मेहमान समझ रहे हैं, और घी लगना बंद हो गया माना हम दुश्मन हो गए होंगे। तो डालडा को देसी हो। तो घर में जब लॉकडाउन लगा लोग तो बड़े खुश हो गए 2-4 दिन के लिए, आपस में खूब गप्पे शप्पे मारी, टीवी देखा, घूमे फिरे, ना तो बंद ही हो गया सारा। लेकिन धीरे धीरे फिर वो पापा और बच्चों का आपस में संवाद चलता है, तो पापा कहता है लॉकडाउन के कारण मैं पागल हो गया हूं पागल। तो वो बच्चे कहते हैं तुम मम्मी से सवेरे से लड़ रहे हो, तो मम्मी कहते हैं बाहर जाके इनको डंडे भी पड़े हैं। तो सारे एक चुटकला था ये। तो बच्चे कहते हैं जब तक पापा ऑफिस में थे ना तब तक हम ठीक थे, जब से घर में बैठे ना घर का सत्यानाश कर दिया है। बच्चों की मानसिकता ऐसी हो गई, यानी क्योंकि उनकी बंदिशें लगी, बाप की नजर बच्चों पर पूरी। अब बच्चों की जो आदतें हैं वो दब रही हैं एकदम, क्या करेंगे फिर, उत्पात मचाएंगे। तो ये जिसकी धारणाएं लंबे समय से मजबूत हैं, जिनका स्वयं के जीवन का दूसरों के ऊपर प्रभाव है, तो वहां धारणाएं भी अच्छी हैं और घर में माहौल भी अच्छा रहता है। तो ये था कि डिस्टर्ब नहीं होना, ना हमको डिस्टर्ब करना है ना डिस्टर्ब होना है। फिर बाबा ने कहा आवाज फैलाने का साधन क्या है, अगर सेवा की आवाज फैलाने का साधन है VIP विशेष आत्माओं की सेवा। बाबा ने कहा एक विशेष आत्माओं की सेवा अनेक विशेष अनेक आत्माओं को निकालेगी, वो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। साधारण आत्माओं को तो रहेंगी अपना, वो वर्षा प्राप्त करेंगी, लेकिन विशेष आत्माएं VIP आत्माएं हैं, एक आत्मा निकल जाए तो उसकी अनेकों की सेवा करेगी। बाबा ने कहा भले वो VIP ज्ञान में चले नहीं चले, लेकिन उसको अपने धर्म में कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी आगे जाके, इधर आने से या उसके अपने धर्म में, जो भी जिस धर्म में है वो, वहां कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा उसको, ताकत उसको मिलेगी। तो ये चीज थी। और फिर बाबा ने कहा, बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की कि तुम सदा अमर बाबा के वरदानी हो। किस किस में वरदान? फिर अमर बाबा के अर्थात इस ब्राह्मण जीवन में हम अजर अमर अविनाशी रहें, सदा रहें, पुरुषार्थ में अजर अमर अविनाशी रहें, खुशी हमारी सदा कायम रहे, आपस में स्नेह हमारा सदा कायम रहे, एक दो को आगे बढ़ाने की भावना सदा कायम रहे। तो ये सदा अमर भव के वरदानियों, वरदानों से पल रहे हो तुम बच्चे, तुम्हारा अटूट स्नेह है, और इस अटूट स्नेह के कारण बेफिक्र भाषा हो। जैसे बाप भी बेफिक्र भाषा है, तुम बच्चे बेफिक्र भाषा हो। बाप क्यों बेफिक्र भाषा है? क्यों? वे निमित्त समझ के चलते हैं, और जितना निमित्त ना उतना न्यारा, और उतना फिर बेफिक्र भाषा भी है। तो तुम बच्चे भी ऐसे हो। फिर लास्ट में बाबा ने माताओं से बात की है। बाबा ने कहा माताओं को सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, कौन सा? मेरा बाबा। अभी एक मेरा बाबा शब्द है, एक खजाने की चाबी है, सारा खजानों की चाबी है। कितना सिंपल से आज करके बता दिया। और सच में देखा है माताएं बोली बाली, कभी कभी दो माताएं आपस में बैठती हैं, इतना प्यार से अनुभव सुनाती हैं, बात मत पूछो, भाव भी बोल, शब्द उनके सिंपल होते हैं, लेकिन उनको चेहरे के देखने वाली चीज होती है। बोले बाबा ने तो कमाल कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया संसार में बाबा ने, और हमको इधर बिठा दिया मधुबन में, इतनी खुश बात मतलब जो बोली वाली माता है और अनुभव सुना रही। बोला पहले बाबा ने शांति उनमें सेवा में रखा, फिर ज्ञान शोभ में, अब मधुबन में बुला लिया, इतनी खुशी की बात मत पूछो। तो माताओं के संगठन को बाबा ने, तो बाबा ने कहा ये मेरा बाबा क्या है? सर्प जानों की चाबी है। तो चाबी संभालने आती है, बाबा ने कहा माताओं को चाबी संभालने की आदत है, तो चाबी को सदा संभाल के रखना। तो ये थी, है जी, तो ये सारी मुरली थी। तो इसमें सबसे पहले बाबा ने देखा कि सारे कल्प की, जो सारे कल्प का आधार है, वर्तमान की श्रेष्ठता है। इस श्रेष्ठता के आधार पर ही हमारा सारी बिल्डिंग का 84 जन्मों की जो बिल्डिंग तैयार हुई है, ये हमारा पहला जन्म है, ये बाद में 83 है, पहला जन्म तो ये वाला है। तो ये फाउंडेशन है, इसमें क्या हम पवित्र बने हैं, जो बाप को अति प्रिय लग सके, या जो स्वर्ग के में हमारा गायन हो, द्वापर कलयुग में हो, या फिर वर्तमान में हम ब्राह्मण सो परिष्ठा सबके प्रिय बने, ये देखना है हम सच्चे प्रमाण्य हैं। और दूसरी बात, विदेशियों से बाबा ने कही है कि विदेशी कौन से संस्कार हैं, उनकी यादगार भी भारत में है, क्योंकि उनमें सेवा के संस्कार हैं, स्नेह के संस्कार हैं, भले वो बिखर गए हैं संसार में, लेकिन सेवा के कारण गए हैं। अगर सेवा, अगर तुम बच्चे विदेश में नहीं जाते तो सेवा कैसे होती है? ये बीच में था, दो प्रकार के विमान, हाँ, एक तो है स्नेह का विमान, दूसरा बुद्धि का विमान। तो ये दो प्रकार विमान भी हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह के क्या क्या फायदे होते हैं, स्नेह सफलता भी दिलाता है, और स्नेह चार प्रकार के है, बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, ऐसे बहुत सारे स्नेह की और भी लाइन हम माला बना सकते हैं। फिर ये स्नेह के बिना कोई ज्ञान सुनेगा नहीं, और जहां स्नेह वहां ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, शायद वहां क्यों क्या ऐसे वैसे की वृत्ति नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन भी करेगा तो समझने के हिसाब से करेगा। और ये स्नेह हर प्रकार की हलचल को समाप्त करता है, ये स्नेह सर्व समस्याओं को खत्म करने का साधन है, ये स्नेह मुश्किल को सहज कर देता है, असंभव को संभव करता है, इस स्नेह से सदा उमंग सा कायम रहेगा, ये स्नेह दिल को बड़ी करेगा, और जहां बड़ी दिल है वहां हर कोई बात छोटी लगेगी, और जहां छोटी दिल है वहां हर कोई बात बड़ी लगेगी। और फिर बाबा ने अमेरिका के लिए आ मेरे, अर्थात फिर जैसे बाबा ने कहा वैसे बच्चों में ने कहा आ मेरे बाबा, ऐसे आ मेरे बच्चे बाबा ने कहा बच्चों के लिए। तो ये वाली बात थी। फिर उसके बाद उनका वास्तविक विशेषताएं बताई, कौन सी दो विशेषताएं, विनाश की शक्ति और साइलेंस की शक्ति है, दूसरी मिलान करने की शक्ति। बाबा ने कहा वास्तविक कर्तव्य तुम बच्चों का ये है, कौन सा? सब धर्मों को इकट्ठा करना, मिलाना आपस में, ये तुम बच्चों का एकमात्र कर्तव्य है। फिर बाप ने कहा सेवाओं में विदेश में सेवाओं की विशेष वृद्धि हो रही है, बाप को खुशी है। और वृद्धि के कारण बताया कि हिम्मत है, हिम्मत के कारण बाप की मदद मिलती है। और मदद मिलती है तो क्या होता है, ना उम्मीद मारात्माएं उम्मीदवार बन जाती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, तो सेवा बढ़ती है, बाप इसको देकर हर्षित हैं। फिर बाबा ने फलों के बारे में बताया, स्वर्ग में जो फल बताया कि धरनी जो कलराठी जमीन बन गई है, इस कलराठी जमीन में स्नेह का पानी अगर लगाएंगे तो फल भी अच्छे अच्छे निकलेंगे। तो फिर उसमें तुलना की, स्वर्ग के, विदेश के और भारत के फलों की तुलना की है। फिर बाबा ने साइलेंस की शक्ति की बात की है कि साइलेंस की शक्ति से साइंस और साइंस दोनों झंडे लहराने हैं, और साइंस का साइलेंस का अगर एक सेकंड भी अनुभव कर लिया तो खींचेगा, क्योंकि सब शांति चाहते हैं, साइलेंस चाहते हैं। फिर बाबा ने बताया स्नेह है तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्नेह नहीं मिलता तो सभी डिस्टर्ब होते हैं। फिर बाबा ने कहा आवाज़ फैलाने का साधन है, हाँ जी, VIP की सेवा। और फिर पार्टी से मुलाकात कौन सी, सदा अमर भव की वरदानी हो, अटूट स्नेह, बेफिक्र भाषा हो, निमित हो, निमित अर्थात न्यारेपन। तो जैसे बाप बेफिक्र भाषा है, ऐसे तुम बच्चे बेफिक्र भाषा हो, और अटूट स्नेह है, और मातों से बात चाबी, ये सदा संभाल के रखनी है, ये सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। तो ये सारी मूल्य थी। फिर बाबा ने वरदान में कहा निश्चय अटूल अटूट अटल खंड है तो ना भाग्य नंबर वन है, हाँ तिलकदारी, तो भाग्य भी नंबर वन, उसके फिर निशानियां बताएं, वो सदा अचल अडोल रहेंगे, ज्ञान रत्न से खेलते रहेंगे। और आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में अगर फुल स्टॉप की मात्रा लगी तो प्रसन्नचित रहेंगे। मैंने हर बात को हमको अभी फुल स्टॉप लगाना है, हर बात में कुछ भी देखना, नथिंग न्यू, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना। तो ये आज की मूल्य थी। ओम शांति। हाँ जी, बुद्धि को नया नाम कौन, कंप्यूटर, कंप्यूटर के, ये बुद्धि कंप्यूटर की तरह ही है। देखो इस बुद्धि में, मन बुद्धि में क्या भर पड़ा है, सारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, ये छोटी सी चिप में भी कितना भरा होता है वो देखते हैं। और इस आत्मा के अंदर, छोटी सी आत्मा के अंदर, बाबा ने उस दिन कहा ना परसों के मूल्य में, तुम बच्चे सवेरे सवेरे उठकर चिंतन करो, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा, बंडर बोल रही है। तो उतने, हाँ उस दिन हमने इसी पॉइंट पर अमृत पे ले योग किया, तो सोचा सचमुच कितनी छोटी सी आत्मा है, और बाबा ही छोटी सी आत्मा है लेकिन उसमें कितना ज्ञान है, हाँ जी, वो देखने में भी नहीं आती, तो कितनी वंडरफुल बातें हैं ये। तो बाबा ने सारी वंडरफुल बातें बताई, ये भी वंडरफुल ही है सारी मूल्य। अच्छा, ओम शांति।
जीवन डो